ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि सभी कृपया आगे आके बैठे, यहाँ आगे बहुत जगह खाली पड़ी है। आज हमारा यह राजयोग मेडिटेशन का लास्ट सेशन है और आज का विषय है अटेनिंग 8 पावर्स थ्रू राजयोग मेडिटेशन। और आज इस विषय पर हमें डॉक्टर सविता बहन जी बताएंगे। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर सविता वॉज बॉर्न इन 1965 इन कोटा राजस्थान। शी हैज कम्प्लीटेड हर MBBS इन द ईयर 1989 फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। अर्लियर शी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस सिटीज ऑफ राजस्थान एंड देन शी जॉइंड ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ऑफ माउंट आबू in the year 1991. Up to year 2000, she gave her honorary service in Global Hospital, and from 2001 till now, she has been giving her honorary services in Brahma Kumari's headquarters. She was also a family physician to revered Dadi Prakash Muniji, the then chief administrative head of Brahma Kumari's. She has been deeply interested in spirituality since her childhood, and she came in contact of Brahma Kumaris in the year 1975, and she has surrendered her life for the service of humankind in the year 1990. She has traveled widely in various parts of India to educate people about healthy lifestyle and meditation. She coordinated national level programs of women's wing in the India. She is the headquarters coordinator of women's wing. Now I request respected sister Savita, Dr. Savita Ben, to talk about this subject.
शांति। आपने राजयोग शिविर के सत्रों में और कॉन्फ्रेंस के सेशंस में भी सुना है राजयोग अभ्यास से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो इसी विषय को हम अभी विस्तार से सुनेंगे कि योग अभ्यास करने से कौन सी शक्तियां और गुण जीवन में विकसित होने लगते हैं जो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुलित करते हैं। हम सभी जिस जीवन में आज हैं, अनेक समस्याएं और चुनौतियों का सामना हमें कदम कदम पर करना पड़ता है, तो उन्हें तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शक्तियों को, उनके प्रति अपनी सामना करने की शक्ति को अवश्य हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भीतरी प्रयास है, ये बाहर से शक्तियां नहीं आती हैं, उनका अंदर से ही हमें विकास करना होता है। तो राजयोग अभ्यास से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। ऐसे तो बाह्य शक्तियां भी हैं जिससे विश्व संचालित है। हम देखते हैं आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, अनेक भौतिक ऊर्जा है जो इस विश्व को संचालित कर रही है। लेकिन जब हम इनर पावर्स की बात करते हैं तो फिर वो मन की शक्ति है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, या हम मन की शक्तियों में नैतिक बल, मोरल पावर्स भी कहते हैं, उनकी भी अपनी शक्ति होती है। सभी गुणों की, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये भी अपने आप में एक शक्ति है। कई बार कई भाई बहने हमसे पूछते हैं कि यदि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो क्या कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये भी थोड़ा हमें स्पष्ट समझ लेने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि कई संत महात्माएं ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। वो किसी मंत्र का जाप करते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाती है, या वो किसी को भभूत देते हैं और कहते हैं इससे आपका रोग दूर हो जाएगा या कष्ट मिट जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है, तो ये उनकी आस्था का परिणाम होता है। जो उनकी गहरी आस्था उन गुरु में होती है, संत में होती है, भभूत से कभी कोई ठीक नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धियों के प्रदर्शन से जरूर उनको नाम मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, लेकिन उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता या उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास जो नदी बहती है इसे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा, कितने वर्ष लगे आपको इस सिद्धि को प्राप्त करने में? तो उन्होंने कहा, पूरे 12 वर्ष का समय मुझे लगा है। तो उन्होंने कुछ उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका दूध वाला नदी पार गांव से आता था और जब वो आया तो उन्होंने उन सन्यासी के सामने ही उनसे पूछा, आपने कितने पैसे में नदी पार की? तो उन्होंने कहा, 1 पैसे में। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है वो काम करने में आपने 12 साल लगा दिए, और आपने सन्यास क्यों किया है? आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए सन्यास किया है, तो यदि आप सचमुच तप करते तो अब तक आप ईश्वर के समीप पहुंचे होते। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसे अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम ऐसे चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाए, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। और जो भी जीवन की कमजोरियां हैं, हम कहेंगे वो अंधकार के समान हैं। जैसे अंधकार प्रकाश का अभाव है, अंधकार का अपना कोई स्रोत नहीं है, प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही यदि हम गुणों शक्तियों का विकास करते हैं तो हमारे विकार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। और आपने सुना है, आप स्वयं भी जानते हैं, आज वर्तमान समाज की दशा है कि घर घर नरक के समान है। हम क्यों इसको नरक के समान कहते हैं, जबकि विकास तो अपनी चरम सीमा पर जा रहा है? इसीलिए क्योंकि हर घर में स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हर घर में आज रामायण और महाभारत चलती है। ये हमारे 2 शास्त्र हैं जो मनुष्य की 2 कमियों पर बने हैं। से रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब जानते हैं रामायण की कहानी, कि जैसे ही राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंथरा उसे ईर्ष्या हुई कि कौशल्या का बेटा राजा क्यों होना चाहिए, मेरी रानी केकई ने राजा दशरथ को मदद की है, उनकी जीवन रक्षा की है और महाराज ने उनको 2 वर दिए हैं और ये सही समय है कि रानी केकई अपने वर ले और भरत को राजा बनाए, और वही उसने किया और परिणाम स्वरूप राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी बनी। महाभारत की कहानी भी हम सभी जानते हैं, भाई भाई के द्वेष की कहानी है, कौरवों और पांडवों में कभी भी प्रेम नहीं रहा, हमेशा ही संपत्ति को लेकर के उनमें द्वेष भाव रहा और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने, कौन से दो शब्द कहे उन्होंने? अंधे का बेटा अंधा। और जैसे ही दुर्योधन ने ये सुना, उसको इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, और इसी कारण उसने जुए का षड्यंत्र रचा और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया पर धोखे से उनको हराया और फिर अपमान का बदला लिया। 12 साल 13 साल उनको वनवास हुआ। जब लौट कर आए तो कहा, राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश हुआ, ऐसे कहेंगे। तो ये कहानी है। हम देखते हैं आज घरों में भी यही स्थिति है, भाई भाई में द्वेष है, और ज्यादा द्वेष किस लिए है? धन संपत्ति को लेकर के है। कहीं भी बंटवारे में कम ज्यादा हो जाता है तो भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आप सब तो उसी फील्ड से हैं, आए दिन आपके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं कि किस तरह से परिवार टूटते हैं, और यहाँ तक कि जान लेने में भी देरी नहीं करते हैं। कुछ समय पहले अखबार में एक घटना छपी थी कि एक भाई ने, उन्होंने अपने खेत की जमीन बेची और उससे उनको 8-10 लाख मिले। तो उनके दो बेटे थे और दोनों बेटे चाहते थे कि पिता हमें ये धन दे जो धन उसको मिला है जमीन बेचने से, लेकिन पिता देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जब नहीं दिया तो वो दोनों बेटे इतने नाराज हुए अपने पिता से कि उन्होंने मिलकर के अपने पिता की ही हत्या कर दी। तो ये तो एक घटना है, ऐसी कितनी घटनाएं आज हम देखते हैं कि होती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है जिसने घर घर को नरक बना रखा है? और उन शक्तियों गुणों का हम विकास करेंगे तो वही घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में 8 मुख्य शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। ऐसे तो अनेक शक्तियां हैं, लेकिन विशेष शक्ति जो हमें योग अभ्यास से मिलती है वो है सहन करने की शक्ति। आज किसी की एक बात को, हम छोटी बात को भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, और एक कहा तो 2 कहेंगे, 2 कहा तो 4 कहेंगे, 4 तो 8 जवाब देंगे। और हमारा सोचना क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, या जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। फिर हम ये सोचते हैं हम क्यों सहन करें, और अगर हमने सहन कर लिया तो हम ही कमजोर समझे जाएंगे या हमारी ही गलती मानी जाएगी। जब हमने गलती की ही नहीं है तो हमें क्यों सहन करना है? और ये स्थिति जब होती है तो छोटी छोटी बातें भी विनाशकारी हो जाती हैं। ऐसे ही पास के गांव की घटना अखबार में थी कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था, और उस बात को लेकर कि वो हमेशा उससे झगड़ा करता था। तो एक दिन वो पत्नी घर पर देर से आई, पहले ही उसको शक था उस बात को लेकर के, उसने फिर उससे झगड़ना शुरू किया और दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ गई कि उनके घर में कुल्हाड़ी थी वो लेकर के उसने उसको जान से मार दिया। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसको समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तो सारी बात समझी कि अब पुलिस आएगी और जेल हो जाएगी, तो उसने अपने लिए फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जो बात सच है भी या नहीं, जिसका उसे पूरा पता भी नहीं है, उस बात को लेकर के एक पूरा परिवार तबाह हो गया। बात छोटी सी है, लेकिन जब हम किसी की भी छोटी कमी को सहन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थितियां, मतलब ये चरम तक है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने चरम पर नहीं जाते हैं, लेकिन जहां भी हम सहन नहीं कर सकते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, और जहां क्रोध होता है वहां ऐसे शब्द हम बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। ऐसे शब्द हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला शायद भूल जाता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। सबसे पहले तो प्रेम समाप्त होने लगता है संबंधों में और फिर ज्यादा बात बढ़ती है तो संबंध टूटने भी लगते हैं। आए दिन आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे तलाक से संबंधित, हम पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते, एक दो की छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर सकते हैं, या माँ बाप बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, कोई भी ये संबंध टूटते हैं इन छोटी छोटी कमियों को जिनको हम सहन नहीं कर पा रहे। तो ज्यादा गुस्सा कहाँ आता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें नहीं मिला। तो यहाँ ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हर एक मनुष्य के विचार भावनाएं और संस्कार भिन्न भिन्न हैं। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है, कोई भी दो मनुष्यों के चेहरे भी नहीं मिलते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचते हैं, तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां आपसी समझ होती है वहां क्रोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। कभी ही ऐसा होता है जब वो समझते हैं वो राइट है हम गलत हैं। तो हो सकता है हम गलत हो, हमेशा ही हम राइट हो ये कोई जरूरी नहीं है, तभी भी हम अगर उनकी बात को समझते हैं तो क्रोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फिर हम अपने लिए सोचें, क्या हम हमेशा दूसरों की बात मानते हैं? अगर हम बहुत बार किसी की बात मानते हैं तो फिर हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कभी वो भी हमारी बात माने। तो जो बात हमारे लिए सही है वही दूसरों के लिए भी सही है। ऐसे ही जहां हम कार्य करते हैं, हम देखते हैं कि व्यक्ति काम में गलती करते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम गुस्सा करते हैं। हम सोचते हैं बिना गुस्से के तो काम हो ही नहीं सकता है, अब गुस्सा किया तो काम हो जाएगा ना, क्योंकि उनको भय होता है और वो अपने भविष्य परिणाम के भय से कुछ नहीं कहते, उस समय बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? एक तो वो कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे, मजबूरी से काम करेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। जैसे ही उन पर गुस्सा किया जाता है उनकी मन की भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं और व्यक्ति मजबूरी से काम करेगा तो जैसा काम आप चाहते हैं वैसा काम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उनके मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बदले की भावना होती है, सम्मान कम हो जाता है, तो वो अवसर ढूंढते हैं और जैसे ही उनको अवसर मिलता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या जरूर पैदा करेंगे। फिर तीसरी बात, कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो क्या हमें पसंद आता है? हमें लगता है काम तो करना ही है लेकिन थोड़ा अच्छे शब्दों में कह सकते थे, थोड़ा प्रेम से भी इस बात को कहा जा सकता था। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही व्यवहार दूसरे भी पसंद करते हैं। हर इंसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को अपना सम्मान प्यारा होता है। फिर बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और आज का तो समय ही ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो बहुत समय कई बार बच्चे उसमें भी लगा देते हैं तो माँ बाप को पसंद नहीं आता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो यहाँ भी वही स्थिति है कि बच्चे जरूर आपकी बात सुन लेंगे, उनको भी भय होता है वो चुप रहेंगे और आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन गुस्से में हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। हाँ, अच्छे शब्द माना हम सब जानते हैं, नालायक है, बेवकूफ है, गधा है, ये कभी नहीं सुधरने वाला है, ये नहीं होता तो अच्छा था, पता नहीं क्या क्या, उस समय जो मन में आता है हम गुस्से में कहते हैं। वो बच्चा जरूर किताब पकड़ लेता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है? गुस्से में जो आपने कहा जो माँ ने कहा या पिता ने कहा, और फिर वही बच्चे आपसे सीख लेते हैं, बड़े होते हैं तो आपका सामना करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी बात मनमानी है तो गुस्सा करो, गुस्सा करने से ही बात मानी जाएगी, तो ये सही तरीका तो नहीं है। सही तरीका है कि अगर हम चाहते हैं बच्चे ये करें और ये ना करें, तो आप उनको समय दीजिए, प्रेम से उनको समझाइए कि उनको ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चे हमेशा कारण जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे ये करवाना चाहते हैं तो वो ऐसा क्यों करें, और यदि आप उनको कन्विंस कर पाते हैं तो वो जरूर करेंगे। लेकिन हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है एक बार में उनको वो बात समझ में ना आए, शायद आपको दो बार तीन बार चार बार समझाना पड़े, तो अपना ही कंट्रोल न होने के कारण, हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो हम उसको गुस्से के रूप में निकालते हैं कि एक बार में नहीं समझ में आया तो बस गुस्सा कर दें और काम हो जाएगा, तो इसके परिणाम लेकिन बुरे होते हैं और माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध की दूरी बढ़ती जाती है, उनकी आपसी समझ खत्म होने लगती है। कई बार कोई हमारी कमी निकालता है या हमारी निंदा करता है तो भी सहन नहीं होता है इंसान को, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है, अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन ज्ञान कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है, हो सकता है, क्या कहेंगे, हो सकता है, क्योंकि वो हमें हमारी कमी बताता है। अगर हम उसे पॉजिटिव देखते हैं तो जो निंदक होता है, जैसे कबीर दास जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे स्वभाव। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि हमारी कमियां जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वो हमारे क्रिटिक्स को दिखाई देती हैं। वो भले ही उसे बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, कई बार वो एक गुना ही होगी, लेकिन कहेंगे वो उसे 50 गुना बढ़ाकर, आप ऑफिस में जाते हैं बिल्कुल टाइम पर जाते हैं, अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, लेकिन कोई कारण से कुछ दिन ऐसा हो गया, दो तीन दिन चार दिन की आपका काम ऊपर नीचे हो गया, आप समय पर नहीं कर पाए, तो जो आपका क्रिटिक होगा वो कहेगा अरे ये तो है ही लापरवाह, ये तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। अब आप हमेशा नहीं करते हैं लेकिन अभी हो गया, तो अगर सचमुच वो मेरी कमी है, 1% भी हमें समझ में आता है कि ये रियली मेरी केयरलेसनेस थी, तो हम अगर इम्प्रूव करते हैं तो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं, मानो कई बार लोग ईर्ष्यावश भी हमारे लिए गलत बातें कहते हैं, सचमुच वो होती नहीं है कमी, लेकिन गलत फहमी हो जाती है या सुनी सुनाई बातों के आधार पर नीचा दिखाने के लिए भी लोग गलत बातें कहते हैं, तो अगर हमें लगता है कि सचमुच ये बात नहीं है तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करें, अपने मन पर हम उसे नहीं लें। जब वो कमी है ही नहीं तो हम उसे क्यों अपने मन पर लेते हैं, मन पर नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। जैसे महात्मा गांधी एक बार प्लेन में सफर कर रहे थे, और अंग्रेजों के समय की बात है, अंग्रेज उनके विरुद्ध थे क्योंकि वो भारत की आजादी के लिए कार्य कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने जब उनको देखा तो जो उसके मन में था गांधी जी के प्रति उसने लिखा और उनको पकड़ा दिया। तो दो पेज थे, वो उसमें पिन लगी हुई थी, तो गांधी जी ने वो पिन ले लिया और बाकी पेज उनको वापस कर दिए, कहा कि देखो भाई जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने रखी, ये मेरे काम की चीज नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो इनको समझ में नहीं आएगा, ये अपनी रीति से वो सब बातें गलत कह रहे हैं। ऐसे ही एक बार मदर टेरेसा गई एक बिजनेसमैन के पास, अपने ट्रस्ट के लिए उन्हें कुछ मदद चाहिए थी अपने पेशेंट्स के लिए, लेकिन वो जो बिजनेसमैन थे उनके मन की भावना कुछ अलग थी और उन्होंने मदर टेरेसा को काफी उल्टी सीधी बातें सुनाई, तो उन्होंने चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं कहा, और जब पूरा हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो आपने मुझे दिया, मेरे पेशेंट्स के लिए आप क्या दे रहे हैं? तो जब उन्होंने सुना तो उनको सचमुच ये बात दिल को लगी और फिर उन्होंने उनके लिए चेक बना करके दिया। तो जो बात हमारे में है ही नहीं, जो कमी है ही नहीं, हम उसे क्यों स्वीकार करें? तो वह थोड़ी सी बात जो उन्होंने सहन कर ली, उसका परिणाम इतना अच्छा मिला उनको। फिर भी मानो कोई बात को लेकर के हमें गुस्सा आता है तो हम उसे पोस्टपोन कर दें। हम सोचें ये बात हमें अभी नहीं कहनी है, कुछ समय के बाद, अब वो 10 मिनट या जितना भी समय, 1 घंटा आप उसको टाल सकते हैं टाल दीजिए। तो दो बातें होती हैं, हमें ये समझ में आ जाता है क्योंकि दिमाग चलता रहता है ना, तो ये समझ में आ जाता है सारी गलती सामने वाले की नहीं है, हमारी भी गलती है, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो परमानेंट पोस्टपोन हो जाता है। पर अगर लगता है नहीं, इनकी गलती है, इन्हें कहना ही चाहिए, अगर नहीं कहेंगे तो हो सकता है ये गलती दोबारा करें, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है। वही बात हम कहते हैं लेकिन अब शांति से कहते हैं, थोड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो सामने वाला उसे स्वीकार करता है और समाधान होता है। तुरंत अगर गुस्से में हम रिएक्ट करते हैं, जब हम तुरंत बोलते हैं तो वो बिना सोचे समझे रिएक्ट करना होता है, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो सामने वाले में भी गुस्सा ही पैदा होता है, क्रोध क्रोध को जन्म देता है। जो विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन, अगर हम किसी को स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल करता है, और अगर हमने गुस्से से बात किया तो सामने वाला भी तुरंत बिना सोचे समझे गुस्सा ही करने लगता है। तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे और हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों ही बहुत क्रोध वाले स्वभाव के थे, एक गुस्से वाला हो एक शांत स्वभाव का हो तो सहज होता है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले हों तो फिर घर में रोज कलह होता था, रोज अशांति होती थी और स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। तो पति तो काम पर चले जाते थे लेकिन पत्नी घर में रहती थी तो बड़ी उदास दुखी रहती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई और कहा कि बहन, मैंने अपने घर में आज कथा रखी है, आप कथा पर आना। तो वो गई कथा पे और देखा पंडित जी कथा कर रहे थे, घर में लोग पाठ वगैरह रखते हैं। तो कथा सुनने के बाद उसका मन उस दिन बहुत अशांत था, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं पंडित जी से बात करूं। तो उसने सारी अपनी समस्या सुनाई और कहा ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, आप मुझे कुछ समाधान बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं अवश्य बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कहूंगा वो आप करोगे। कहा कि हाँ मैं करूंगी। तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और दिया उसको, कहा कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रखना, पानी पीना नहीं है, पानी मुंह में रहेगा। अब वो समझ गई पानी मुंह में रहेगा मतलब, पर पहले ही उन्होंने प्रॉमिस करवा लिया था उससे कि मैं जो कहूंगा वो आपको करना है। तो उसने चुपचाप पानी की बोतल ली और घर चली गई। अब यह तो रोज की बात थी, पति ने गुस्सा किया किसी बात पर लेकिन आज उसने पानी मुंह में रख लिया। अब बोलना चाहती थी लेकिन बोल तो नहीं सकती थी, पानी मुंह में था, बिल्कुल शांत थी। तो पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो रोज बराबर सामना करती है, आज चुप कैसे है? और थोड़ा जोर जोर से बोला कि कुछ बोले, क्योंकि उनको भी आदत पड़ी हुई थी सुनने की, तो उनका चुप रहना भी सहन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर भी उसने पानी मुंह में रख लिया, अभी भी वो शांत थी, बिल्कुल कुछ नहीं कह रही थी। तभी भी उनको लगा अभी भी कुछ नहीं कह रही है, क्या हुआ है? फिर उन्होंने ट्राई किया, दो बार तो ऐसा हुआ लेकिन तीसरी बार उन्होंने ट्राई किया, देखें कि सचमुच इसने अपने आप को बदल लिया है या ऐसे ही चुप है। तो फिर भी उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि पानी मुंह में था। तो ऐसे कई बार जब हुआ तब उनको समझ में आ गया कि इसने अपने आप को बदल लिया है, ये बिल्कुल शांत रहती है, तो अपने ऊपर ध्यान गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा ही गुस्सा करता हूं, मुझे भी ध्यान देना है। तो जब उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया तो नेचुरली उनका भी गुस्सा कम हुआ, और जब दो लोग नहीं बोलते हैं तो वैसे भी एक कितना बोलेगा, तो घर में कुछ दिनों में शांति हो गई। अब ये बहन इतनी खुश हुई, वो गई पंडित जी के पास, कहा पंडित जी मैं नहीं जानती कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, सचमुच आपने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ, देखो आपको कितना अच्छा परिणाम मिला। अगर आप सदा ही ऐसे रहोगी तो सदा ही आपका घर स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी ये कहानी तक ठीक है। हाँ सचमुच जब वास्तविक जीवन में ऐसा होता है तब हम शांत नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। आपसे पूछते हैं हम रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं? हाँ जो समझते हैं हम रह सकते हैं वो हाथ उठाएंगे। देखिए आधे से तो ज्यादा है। हाँ अगर आप सब ये दृश्य याद रखिए कि वहां हमने हाथ उठाया था, और अगर सचमुच आप रहते हैं और ये परिवर्तन भी इस सम्मेलन से होता है तो भी मैं कहूंगी कि इसकी सफलता है। तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी चॉइस है। किसी भी परिस्थिति में मैं कैसा रिस्पॉन्स करूंगी ये मेरी चॉइस है, ये हमारी अपनी शक्ति है कि हम शांत रहें या हम वैसे ही प्रतिक्रिया करें या जैसे को तैसा दें। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में कि जब पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर ही मारते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ से क्या मिलता है, उनको मीठा फल मिलता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। तो इंसान जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि उसके साथ कोई कैसा भी करे लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ व्यवहार करे, फिर भी वो मधुर व्यवहार करे? हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। हम देखते हैं जो भी महान पुरुष कहलाए या जो भी युग पुरुष कहलाए इतिहास में, उनके जीवन की विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी आम इंसान के जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा मानवता के प्रति प्रेम रहा उनका। तो हर मनुष्य को क्षमा किया, उसके प्रति दया रखी, करुणा का भाव था उनके मन में। जैसे हम देखते हैं माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो उसकी कोई भी गलती उसके चित्त पर नहीं रहती है, वो बच्चे की हर कमी को बहुत आराम से सहन कर लेती है। प्रेम से वो सहन शक्ति बढ़ जाती है, जो प्रेम का गुण होता है। तो उनका प्रेम कोई एक दो लोगों के प्रति नहीं, लेकिन पूरी मानवता के प्रति उनका वो प्रेम था जिस कारण वो इतने महान कार्य कर सके और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। हम ईसा मसीह को देखते हैं, लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाया तो भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी उनके मुंह के शब्द थे क्षमा करना, ये नहीं कहा कि हे पिता तू इन्हें सजा देना, सारे जीवन मैंने इनकी सेवा की और आज मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और यही कारण है कि आज विश्व में जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की भगवान के रूप में पूजा होती है। अगर वो भी आम इंसान जैसा व्यवहार करते तो इतनी महानता, इतना परम पद उनको प्राप्त नहीं होता। महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं तो ऐसे ही उनको महात्मा नहीं कहा, उनके जीवन के भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब उन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो महात्मा कहलाए। हम महात्मा सुकरात को याद करते हैं, जो भी हमारे यहाँ के संत हुए हैं, भारत के संत एकनाथ थे, वो एक बार गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए, खास महाराष्ट्र से वो वहां स्नान करने के लिए गए। तो जब वो लौट रहे थे तो एक पठान था, उसको मजाक सूझा, उसने उनके ऊपर थूक दिया।
तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, दोबारा आकर के स्नान कर लिया और फिर जा रहे थे। उसने फिर से थूक दिया क्योंकि वो सोच रहा था कि इसका कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। कितनी बार स्नान कर लिया, कितनी बार उसने थूका, आखिर वो अपने छज्जे से उतर कर नीचे आया उनके सामने और कहा कि आपके साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहा है वो मैं हूं, आपको कुछ कहना है मुझे? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, मुझे आपको धन्यवाद देना है। हाँ, मैं खास महाराष्ट्र से इतनी दूर आया हूँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए, आज आपके कारण मैंने इतनी बार स्नान किया। हाँ, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता। तो देखिए, सोच ही अलग है, सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग। तो वो प्रतिक्रिया नहीं है जो एक कोई हमारे ऊपर थूक दे तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसको समझा देंगे थूकने का मतलब क्या होता है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति वो प्रेम का भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव होता है और हम सहज ही उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को सहन कर सकते हैं। वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे एक साधारण मनुष्य देता है और सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। ऐसे ही दूसरी शक्ति योग अभ्यास से जो हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। हम सबके जीवन उतार चढ़ाव से गुजरते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये स्थितियां जीवन में पैदा होती हैं। कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी निंदा भी होती है, कभी हमें लाभ होता है, कभी हानि भी होती है। ये दोनों स्थितियां मनुष्य को विचलित करती हैं, उसके मन को विचलित करती हैं या मन को अशांत करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन एक योगी हर स्थिति में संतुलित रहता है, वो निंदा में, असफलता में, हानि में बहुत दुखी नहीं होता और लाभ में, सफलता में, बहुत अहंकार में नहीं आता है क्योंकि उसका हृदय विशाल होता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक सागर में अनेक नदियां बहुत गंदा जल डालती हैं क्योंकि सागर तक जब वो नदी पहुंचती है सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है वो, उसके अंदर जो भी कचरा पड़ता है सागर में, सागर की सतह कभी भी मैली नहीं होती है, सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। कारण कि अगर हल्की वस्तु पड़ती है तो लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं और भारी वस्तु पड़ती है तो वो तले में चली जाती है। तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति का जीवन होता है। संसार में बहुत कुछ अच्छा बुरा हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सामने आता है, लेकिन हम ग्रहण वही करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जो सार्थक है। जो कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए, थोथा दही उड़ाए। यानी सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है जैसे सूप का स्वभाव। अनाज साफ करने वाला सूप अनाज को रख लेता है और सारे कचरे को फेंक देता है। तो इस संसार में भी यही स्थिति है। अनेक बुरी बातें या कचरे जैसी बातें हमें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अगर वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसे सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे बहुत समीप है और उनको कोई समस्या है, वो हमसे राय लेना चाहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं और सारी बात सुनाकर कहेंगे, आप ये किसी को नहीं कहना क्योंकि ये मेरी बहुत पर्सनल बात है। हमने सुनी और फिर हमारा कोई अपना होता है जिसको हमने वही बात कही और कहा, आप किसी को मत कहना क्योंकि ये इनके व्यक्तिगत बात है। अब उनका भी कोई अपना होता है और वो उसको वही बात कहते हैं और फिर कहते हैं, आप किसी को मत कहना क्योंकि ये इनकी पर्सनल बात है। अब जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो बात फैलती है और फिर कहने वाला सीधे सीधे वो बात नहीं कहता है, उसमें वो अपना भाव भी डालता है, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जब वो बात घूम फिर करके फिर से उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तब तक बात पूरी तरह से बदल चुकी होती है और उनको ये सुनकर बड़ा मन में दुख होता है कि इतना विश्वास हमने इनके ऊपर किया, हमें धोखा मिला। हमने कहावत सुनी है, घर का भेदी लंका ढाए। कहावत कैसे बनी कि कहा रावण की हार क्यों हुई, क्योंकि जो विभीषण थे उन्होंने रावण के सारे राज राम को खोल दिए थे, इसीलिए रावण हार गया। हमारा देश भी हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। कारण था, हमारे देश में राजाओं के पास ऐसे भेदिये होते थे जो उनके सारे राज जाकर के दुश्मन को खोल देते थे और उस कारण से वो विजयी बन जाते थे। तो ये भी समाने की शक्ति की कमी है कि हम किसी भी बात को या किसी के भी राज को समा नहीं सकते अपने अंदर। जो बात नहीं कहनी चाहिए उसे हम कह देते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक शिल्पकार 3 बहुत सुंदर मूर्तियां लेकर के आया। तीनों एक जैसी थी लेकिन तीनों के दाम में अंतर था। तो राजा ने उसको पूछा कि तीनों तो एक जैसी हैं, इनके दाम में अंतर क्यों है? तो उसने कहा, महाराज, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, मैं आपको इसका प्रदर्शन करके दिखाता हूं। तो उसने पहली मूर्ति के कान में तार डाला और वो कान उसके मुंह से बाहर, तार मुंह से बाहर आया। तो उसने कहा, महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी बात सुनता है तुरंत कह देता है, बात रहती नहीं है उसके मन में, और ऐसे व्यक्ति कभी भी विश्वास पात्र नहीं हो सकते, वो आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके दरबार का राज कभी भी राज नहीं रहेगा। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो उसके मुंह से बाहर नहीं आया लेकिन दूसरे कान से बाहर आया। तो उसने कहा, महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी बात सुनता है, कहता नहीं है, लेकिन दोनों कानों के बीच में दिमाग है, मन में प्रश्न उठने लगते हैं, ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव था, ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, और इसके कारण ये कभी भी सही समय पर निर्णय नहीं ले सकेगा क्योंकि मन उलझन में है। तो ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार के लिए उचित नहीं है। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वो ना मुंह से बाहर आया ना कान से बाहर आया, वो उसके पेट में चला गया। तो उसने कहा, महाराज, ये सबसे उत्तम व्यक्ति है, कोई भी बात सुनता है ना बोलता है ना इसके मन में उलझन होती है, जैसे बात हुई नहीं, पूरी तरह से वो समा जाती है, और अगर कभी कहना भी है तो वो उचित स्थान पर ही उसे कहता है। तो ऐसे व्यक्ति ही विश्वास पात्र होते हैं और आपके दरबार में होने चाहिए। राजा खुश हुआ और उसने उसकी तीनों वो मूर्तियां खरीद ली। तो हम में से भी 3 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं। एक होते हैं जो जब तक किसी की बात को सुना नहीं देंगे, कहते हैं कि खाना ही हजम नहीं होता है, कहावत है, इनके पेट में बात नहीं पचती है, इसलिए कहावत बनी। और कुछ इतने गंभीर होते हैं कि कितनी भी राज की बात हो कभी भी उनके मुख से बाहर नहीं आएगी, और ऐसे व्यक्ति ही लोगों के दिल का विश्वास जीत पाते हैं। तो अगर कभी भी हमें कोई बात कहनी भी है तो सही स्थान पर सही भाव से, अगर हम शुभ भावना से उसको कहते हैं, तब हम उसे गंभीरता का गुण कहेंगे या समाने की शक्ति हमारे अंदर है। और राजयोग अभ्यास से तीसरी और चौथी शक्ति जो हमें मिलती है वो है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। ये दोनों शक्तियां जीवन में साथ चलती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम दुविधा में होते हैं। दुविधा में माना समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उचित है अनुचित है। तो पहले तो हमें परखना होता है, फिर निर्णय लेना होता है, और यदि हम सही निर्णय ले लेते हैं तो सफल होते हैं। अगर निर्णय गलत हो जाते हैं तो बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय ऐसा नहीं किया होता, ऐसा कर लिया होता तो हम सफल होते। तो आप देख रहे हैं यहाँ परखने की शक्ति जौहरी दिखाया है। जौहरी को रत्नों का ज्ञान होता है, आभूषणों की परख होती है, और इसीलिए वो अपने व्यवसाय में सफल होता है। तो हम देखते हैं ज्ञान से परखने की शक्ति बढ़ती है। अगर उसे वो रत्नों का ज्ञान नहीं हो तो वो कभी भी असली और नकली की पहचान नहीं कर पाएगा। ऐसे ही डॉक्टर है, उसे बीमारी का ज्ञान है, तब वो बीमारी को परख सकता है और उस अनुसार सही इलाज कर सकता है। आप लॉ के क्षेत्र में हैं तो कानून की परख है, कानून का ज्ञान है, तभी आप सही न्याय दिलवा सकते हैं जिसको भी न्याय दिलवाना है। तो जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा ज्ञान संपूर्ण है तो हमारे परखने की शक्ति अच्छी होती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाता है, और स्वच्छ बुद्धि, जैसे हम कहेंगे कि अगर पानी स्वच्छ है तो उसके तले तक भी हम देख सकते हैं कि क्या है। तो जब बुद्धि स्वच्छ होती है तो व्यक्ति के भाव को भी हम परख सकते हैं इसके मन में, क्योंकि आज का मनुष्य ऐसा है कि अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। आप सभी अनुभवी हैं, कोई भी अपराधी आपके पास आएंगे वो कभी भी सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि सच बोल करके अगर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया तो फिर पता ही है कि सजा मिलने वाली है, सजा से बचने के लिए ही तो वो आते हैं। तो फिर परखना, उस समय व्यक्ति को परखना कि वो किस भाव से क्या बात कह रहा है और कहाँ तक वो सच हो सकती है, वो अंतर्दृष्टि हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है जब बुद्धि स्वच्छ होती है। अगर मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बहुत नेगेटिव संकल्पों में ही हमारा मन उलझा हुआ है, तो ये परख हम नहीं कर पाते हैं। फिर निर्णय शक्ति को तराजू से दिखाया है। ये तराजू के तीन भाग होते हैं, पलड़ा, डंडा और कांटा। सही तौल के लिए दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और कांटा सीधा होना चाहिए। यानी जब हमारी बुद्धि निष्पक्ष होती है और मन बुद्धि एकाग्र होती है, संतुलित होती है, तब हम जीवन में सही निर्णय कर पाते हैं। योग अभ्यास करने से मन को एकाग्रता का अभ्यास हो जाता है। फिर परमात्मा से हमारी बुद्धि लगी होती है तो उसकी भी मदद हमें मिलती है, क्योंकि भगवान हमें अंतः प्रेरणाएं भी देते हैं, उसके आधार पर हम सही निर्णय जीवन में ले पाते हैं। पांचवी शक्ति जो हमें मिलती है वो है सामना करने की शक्ति। जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं और हमें उनका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं, किस तरह से हम उसका सामना करते हैं। जैसे चित्र में दिखा कि कभी भी कोई निकट संबंधी या परिवार के सदस्य की मृत्यु, जो बहुत नियर एंड डियर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति इतना दुखी होता है कि कई बार वो महीनों तक, सालों तक भी सामान्य नहीं हो पाते। ऐसे लगता है कि उस व्यक्ति के साथ जैसे उनका जीवन भी समाप्त हो गया। ऐसे कितने ही भाई बहने हमसे मिलते हैं जिनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई या पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका जीवन कैसा है। लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं है, सिर्फ शरीर की मृत्यु है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी। अब उसका ये कर्म संबंध समाप्त हुआ है तो जहाँ उसका पार्ट है वो अलग नाम रूप से दूसरे जन्म में जाकर दूसरा पार्ट बजाने के लिए गई है। तो उनके लिए हम शांति का दान करते हैं या शुभ भावना रखते हैं, उनका भविष्य जीवन श्रेष्ठ हो। क्योंकि ये सत्य भी हम जानते हैं, जो चला गया है वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके लिए हम शुभ भावनाएं दें। लेकिन अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा तक पहुंचता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है। एक बार ऐसे ही एक भाई थे, उनका एक छोटा बेटा, 8-10 साल का बेटा था, इकलौता बेटा था उनका, और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब इतना प्यार था अपने बेटे से, एक ही बेटा था, कि उसकी मृत्यु के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वो उसकी याद में रोते नहीं थे। तो महीनों हो गए और कई बार ऐसी आत्माएं फिर सपने में आकर के अपनी बात कहती हैं। तो उन्होंने कुछ महीनों के बाद एक सपना देखा और सपने में देखा कि उनका बेटा जो है वो फरिश्तों की सभा में है और सभी फरिश्तों के हाथ में कैंडल है, वो कैंडल जल रही है, लेकिन उनके बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा, बेटा आपकी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा कि पिताजी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोज रोते हैं, आपके आंसू गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है, प्लीज आप रो नहीं। तब उसको समझ में आया कि मेरे रोने से मेरे बेटे के भविष्य जीवन पर असर हो रहा है। फिर उस दिन के बाद से उन्होंने रोना बंद किया। लेकिन कई कहते हैं बहन जी हम रोएंगे नहीं ना तो लोग कहेंगे हमको इनसे प्यार ही नहीं था। तो हम कई बार सचमुच रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन रोना चाहिए, दिखाने के लिए रोना चाहिए। हमारा जो भी कर्तव्य है उस आत्मा के प्रति वो अवश्य हम पालन करें, लेकिन मन में उनके प्रति वो शुभ भाव और शांति देने का भाव होना चाहिए। और भी कई परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, मानो व्यापार में हानि हो जाती है, कोई शरीर को ऐसी बीमारी लग जाती है जो आजकल तो क्रॉनिक डिजीजेज ही होते हैं, या कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है, तन का रोग है, धन की हानि है, अचानक ही कोई अनहोनी हो जाती है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जैसे भूकंप आ गया, ये सब कुछ सोचा तो नहीं होता है, कभी भी अचानक जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म की गति को जानता है, उसे पता है कि कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं होता है, हर परिणाम का कोई कारण है। तो कहां ना कहां वो हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, तो हम धैर्य रखते हैं और आगे के लिए हम सावधान रहते हैं। और ये ज्ञान भी है कि इस ड्रामा में, इस सृष्टि चक्र के खेल में जो भी होता है उस घटना के पीछे कोई ना कोई शुभ और भला और कल्याण भी होता है। से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, देखने में बुरा लग रहा है लेकिन उसमें हमारा कहीं ना कहीं भला भी है। जैसे गीता में कहा जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके ऊपर शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में उसकी सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई और उसने अपने मंत्री को दिखाया, तो मंत्री ने सहानुभूति देने की बजाय कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि अच्छा कैसे हुआ, मेरी उंगली कट गई, ये मंत्री जी मेरे विश्वास पात्र नहीं है। गुस्से में आकर के राजा लोग उस जमाने में किसी को भी जेल में बंद करवा देते थे या कोई भी सजा देते थे, तो उसने मंत्री को जेल भिजवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था और वो कुछ दिनों के बाद जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। तो आज वो अकेला ही था शिकार पर और शिकार का पीछा करते करते वो दूर निकल जाता है और वहां कबीले के लोग रहते हैं, और उस दिन वो कबीले के लोगों का देवी को नर बलि चढ़ाने का दिन था। देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ानी थी उनको, और वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। अब ये राजा को पकड़ लेते हैं और राजा के साथ कोई था भी नहीं उस दिन, तो वो समझाने की कोशिश करता है मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं राजा तो सबसे उत्तम होता है, आप जैसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो ले जाते हैं राजा को अपने मंदिर में पुजारी के पास। तो बलि का नियम होता है बलि संपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो पुजारी ने देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा कि ये बलि तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो, आप कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। तो राजा खुश होता है और तुरंत निकल जाता है वहां से, और उसे मंत्री की बात याद आती है जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब उसे समझ में आता है कि सचमुच उंगली कटी हुई थी, इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो आज बलि चढ़ ही जाती थी। जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है, मंत्री के पास जाता है और उसको सारी घटना सुनाकर कहता है मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज समझ में आई आपकी बात, लेकिन मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री कहता है नहीं महाराज ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था। और अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो संपूर्णता। तो देखने में घटना कैसी थी? दोनों के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भला था जो भविष्य में था, यानी भविष्य के पर्दे में था, उस समय नहीं समझ में आया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि उस समय शायद हम नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में हमें बात समझ में आती है कि जो भी हुआ इसमें हमारा ही कल्याण था, इसमें हमारा ही भला था। तो इस तरह से भी अगर इस नजरिए से हम देखते हैं तो हमारा धैर्य बना रहता है। और एक राजयोगी ये भी समझता है कि ईश्वर मेरे साथ है, और जब सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान का साथ मेरे साथ है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम निर्भय होते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो बहुत निर्भय होकर चलता है, क्योंकि उसे पता है मेरे रक्षक हैं मेरे साथ। एक बार ऐसे ही युद्ध के मैदान में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया, और अर्जुन को जब सारी बात पता चली तो उसने सुनकर के उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला दूंगा। तो बहुत कड़ी प्रतिज्ञा थी, और श्री कृष्ण जानते थे कि जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है, और अगर वो नहीं मरा तो अर्जुन खुद चिता में जल जाएगा। तो दोनों की तरफ स्थिति बहुत गंभीर है। तो उस रात को शिविर में सब सो रहे थे और अर्जुन भी सो रहा था, लेकिन कृष्ण युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे कि अगले दिन का युद्ध कैसे चलेगा। तो फिर उनकी नजर अर्जुन पर गई, उन्होंने देखा ये तो इतने आराम से सो रहा है, तो उन्होंने उसको उठाया। अर्जुन तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या प्रतिज्ञा की है, इतना निश्चिंत तुम कैसे सो सकते हो? तो अर्जुन ने कहा कि माधव मुझे पता है आप मेरी चिंता कर रहे हैं, आप मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो जैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ होते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमारा मात पिता है, वो सर्व संबंधों से हमारा साथ निभा सकता है, जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे उसका साथ हमें उपलब्ध हो सकता है। राजयोग से ये शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, और इस तरह से हम अपनी चिंताएं अपनी जिम्मेवारियां भगवान को सहज सौंप सकते हैं, और हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। छठी शक्ति जो हमें मिलती है वो है सहयोग की शक्ति। हम सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही एक परिवार है, लेकिन राजयोग हमें सही अर्थों में समझाता है कि वसुधैव कुटुंबकम कैसे है। हम सभी परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान है, फिर चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, आत्मा का धर्म एक ही है, और वो आत्मा का धर्म है शांति प्रेम और सुख। तो इस तरह से हम जब पूरे विश्व को परिवार समझते हैं तो सबके प्रति सहयोग देने की भावना हमारे अंदर होती है। ऐसे नहीं कि चार छह सदस्यों का परिवार मेरा परिवार है, यही मेरे अपने हैं, इनको ही मुझे सहयोग देना है, नहीं। लेकिन इस विश्व के किसी भी आत्मा को हमारे सहयोग की जरूरत है, और हम दे सकते हैं तो हम अवश्य वो सहयोग देते हैं। और जहां सहयोग है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं एक और एक वैसे दो होते हैं, लेकिन सहयोग में एक और एक 11 होते हैं, इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाती है। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि हमेशा असुर शिकायत करते थे कि आप देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि देवताओं में विशेष गुण है, तो उन्होंने भोजन के लिए एक शर्त रखी कि उनके हाथ बांध दिए जाएंगे, वो कोहनी नहीं मोड़ सकते हैं भोजन करते समय। तो पहले असुरों को बिठाया गया और उनके हाथ बांध दिए गए, तो अब कोहनी नहीं मोड़ सकती तो कौर मुंह में नहीं डल रहा था। बहुत कोशिश की उन्होंने लेकिन कौर वो मुंह तक नहीं ले जा सके और आखिर हार कर वो उठ गए। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, भूख भी लगी थी, लेकिन वो भोजन नहीं कर सके। फिर उसके बाद देवताओं को बिठाया गया। देवताओं के लिए भी वही शर्त थी, उनके हाथ बांध दिए गए। लेकिन देवताओं ने सोचा कि चलो हम खुद भोजन नहीं कर सकते तो हम दूसरे को तो खिला सकते हैं, तो वो आमने सामने बैठ गए। उन्होंने पंक्ति ही ऐसी बनाई कि एक दूसरे के सामने बैठ गया और एक ने दूसरे को भोजन खिला दिया और सबने भर पेट भोजन किया। अब वो सहयोग की शक्ति से जो असंभव कार्य था वो देवताओं ने सहज संभव कर लिया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि भागवत में एक प्रसंग आता है कि गोकुल पर जब बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो केवल श्री कृष्ण की उंगली नहीं लेकिन सभी गोप गोपियों की उंगली का सहयोग था। तो ये तो एक यादगार है, सचमुच पर्वत उठाने की बात नहीं है, लेकिन ये उस कार्य का यादगार है जब परमात्मा विश्व में आकर विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, तब वो जादू मंत्र से संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ साथ इस संसार की अनेक आत्माओं का सहयोग होता है, उनके तन मन धन। जो तन से सहयोग कर सकते हैं वो तन से, जो धन से कर सकते हैं वो धन से, और मन से भी अगर हम उस कार्य के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हैं तो वो भी हमारा सहयोग होता है। और इस तरह से सर्व के सहयोग से कई बार हमें लगता है कलयुग इतना बड़ा विशाल विश्व है, क्या सचमुच बदल कर ये स्वर्णिम विश्व, सतयुगी विश्व इस संसार में हो सकता है? क्या दुनिया सचमुच इतना सुख शांतिमय समृद्धिपूर्ण हो सकती है? एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आ सकता है। लेकिन जहां सबका सहयोग है, क्योंकि ये विश्व सभी मनुष्य आत्माओं से बना है, तो जब मनुष्य आत्माएं एक दूसरे को दुख देते हैं तब ये संसार कलयुग हो जाता है, और यही मनुष्य आत्माएं जब सबको सुख देने वाले हो जाएंगे तो यही संसार स्वर्ग हो सकता है, सतयुगी दुनिया हो सकती है। तो परमात्मा इस तरह से विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं कि सबके सहयोग से वो संभव होता है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं अगर हम अकेले ने कुछ ऐसा कर लिया तो उससे इतनी बड़ी दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर एक भी हिम्मत रखता है तो उसे सबका सहयोग मिलने लगता है और साथ साथ भगवान की भी मदद, कहते हैं ना गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान की मदद भी उनको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। एक बार ऐसे ही जंगल में आग लगी और सब जानवर डर के भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया थी वो तालाब पर जाती थी, चौंच में पानी भर के वो आग में डाल रही थी, तो जब जानवरों ने देखा तो उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारी चौंच पर पानी से आग बुझ जाएगी। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा मुझे पता है कि मेरे चौंच पर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब भी इस आग का जिक्र होगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो हाथियों ने सुना तो उन्होंने कहा इतनी छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत कर सकती है, हम तो आग बुझाई सकते हैं। तो वो तालाब पे जाकर के सूंड में पानी भर के आग पे डालने लगे और सचमुच थोड़े समय में आग बुझ गई। किसने बुझाई? देखने में हाथियों ने बुझाई, लेकिन प्रेरणा कहाँ से आई? उस छोटी चिड़िया से, जो जिसके लिए वो काम असंभव था। तो हम देखते हैं, देखो महात्मा गांधी ने जब आजादी का संकल्प लिया उस समय वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ गया, उन्होंने वो हिम्मत रखी और भारत आजाद हो गया। ऐसे ही परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जब ये विश्व परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया तब ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो आज ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है और आने वाले समय में सचमुच धीरे धीरे ऐसा होगा कि पूरा विश्व परिवर्तन अवश्य हो ही जाएगा। संयोग में इतना बड़ा बल और शक्ति है। सातवीं शक्ति जो हमें मिलती है वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां साथ साथ चलती हैं जीवन में, विस्तार को सार में लाना और समेटना। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में कछुआ ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर आवरण होता है और वो हमेशा अपने अंगों को उसमें समेटे रहता है और सुरक्षित रहता है। जब उसको खाना होता है, चलना होता है, वो अपने अंग बाहर निकालता है, अपना कार्य करता है और फिर वापस अपने अंगों को उसमें समेट लेता है। एक योगी का जीवन इसी प्रकार का होता है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, मन बुद्धि को कार्य में लगाते हैं, कुशलता पूर्वक अपना कार्य करते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर आत्मा में स्थित कर लेते हैं। आत्मा में स्थित होने से आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद का अनुभव हम करते हैं, यानी परिस्थितियों के प्रभाव से न्यारा हो जाने की कला हमारे अंदर आती है और यहाँ तक कि हम अपने मन को इस संसार से पार परम धाम में परमात्मा के पास भी ले जा सकते हैं, उसकी याद में भी स्थित कर सकते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठा देता है। जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन जब ऊपर जाता है तो नीचे कितने भी पहाड़ नदियां हो उसके लिए कोई बाधा नहीं है क्योंकि वो उनसे ऊपर उड़ रहा है। ऐसे ही मन जब ऊंची स्थिति में होता है तो संसार की परिस्थितियां नीचे रह जाती हैं, यानी उसके प्रभाव से मन न्यारा हो जाता है। तो न्यारा होने की कला, जब चाहे हम शामिल हो जाएं और जब चाहे हम अपने आप को डिटैच कर लें, ये शक्ति एक योगी के अंदर आने लगती है। और समेटने की शक्ति का अर्थ ये है कि हम सभी ये जानते हैं, जीवन के सत्य को हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन हम जीवन कैसे जीते हैं, जैसे ये जीवन सदा ही है, हम सदा ही इस संसार में रहने वाले, यानी हम इस सत्य को भूले रहते हैं और इसीलिए मन पूरी तरह से विषयों में लिप्त रहता है। कहते हैं तीन तरह के मनुष्य होते हैं इस संसार में, एक समझते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, है ना, स्वार्थी, जिसको हम स्वार्थी कहेंगे, यानी किसी दूसरे का भी कैसे मेरा हो जाए इस प्रयत्न में लगे रहते हैं। आज ज्यादातर संसार की स्थिति यही है, इसीलिए भ्रष्टाचार फैला हुआ है यदि हम दूसरे शब्दों में कहें। दूसरे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, आपका मुझे नहीं चाहिए लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा ही अधिकार है, वो हम आपको नहीं देंगे, ये मानवीय सहज मानवीय वृत्ति हम कहेंगे। जो पहले वाली है उसे हम लगभग आसुरी वृत्ति कह सकते हैं, मानवीय। और तीसरी है न कुछ तेरा न कुछ मेरा, सब कुछ मिला है इस संसार में मिला है, जिसको हम कहते हैं भगवान ने हमें दिया है, ना कुछ हम लेकर के आए थे ना कुछ हम लेकर के जाने वाले हैं, इसे हम आध्यात्मिक वृत्ति कहेंगे। तो सचमुच ऐसा ही है, कोई कितना भी मिलियनेयर क्यों ना हो, क्या अपने साथ एक पैनी भी एक पैसा भी ले जा सकता है? जैसे सिकंदर महान के जीवन की घटना है कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उसने अपने वजीर को कहा कि मेरे हाथ कोफिन से बाहर निकाल देना। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा मैं अपने आप को विश्व विजेता समझता हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैं कहलाता हूँ, लेकिन आज जब मैं मर रहा हूँ तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ मैं? तो मैं संसार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर महान भी इस दुनिया से खाली हाथ गया। तो सचमुच हम कुछ भी ले जाने वाले यहाँ से नहीं हैं, लेकिन क्या ले जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति के तीन दोस्त थे, एक बहुत करीब मित्र सदा उसके साथ रहता था, उठता बैठता था, खाना पीना सब साथ में चलता था। दूसरा जो था वो दूसरे शहर में रहता था तो कभी दिनों में मिलता था। एक तीसरा दोस्त था जो कभी सालों में मिलता था उससे, लेकिन दोस्ती थी। अब ये एक बार मुकदमे में फंस गया, मुकदमा भी ऐसे कि उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया गया कि इसने हत्या की है, जबकि उसने हत्या नहीं की थी, पर जिसने आरोप लगाया उसको फंसाया, उसने पूरा सिद्ध कर दिया गवाहों से कि इसने हत्या की है, तो दोष साबित होते ही उसको उम्र कैद हो गई। अब उसने अपील की कि मैंने तो हत्या की नहीं है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो फिर जज ने उसको कहा कि देखो, तुम्हारे पक्ष में जब तक गवाही नहीं होगी तब तक तुम्हारी सजा नहीं बदल सकती, क्योंकि सारे गवाहों ने सिद्ध कर दिया है कि तुमने हत्या की है। तो उसने सोचा मेरे दोस्त तो मुझे जानते हैं, वो मेरी गवाही देंगे, और इस तरह से उसने सबसे पहले अपने उस दोस्त को कहा जो उसके सब साथ रहता था। तो उसने तुरंत सुनते ही मना कर दिया, बोला मैं गवाही नहीं दे सकता, मेरे को कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है और मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ। उसने बहुत उसको कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं माना। अब सबसे ज्यादा उसको उसी से उम्मीद थी, उसी ने मना कर दिया। अब उसने कहा दूसरे से चलो पूछ लेते हैं। तो पूछा तो उसने कहा दोस्त मैं अदालत तक आ जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर गवाही देने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ा सकता हूँ लेकिन वहां खड़े होकर के नहीं बोल सकता। तो उसने कहा नहीं दोस्त, गवाही देनी है, अगर गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा ऐसी ही रहेगी। तो वो भी नहीं माना किसी भी कीमत पर। अब तीसरे से तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जो सालों में कभी मिलता था वो क्या गवाही देगा। पर उसने उसको पूछा तो उसने कहा कि दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। ऐसे ही आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त ये शरीर, दिन रात जीवन भर आत्मा और शरीर का साथ है, लेकिन अंतिम समय में सबसे पहले शरीर ही छूट जाता है। सारी प्रवृत्ति भी हमारी शरीर के लिए ही चलती है। 8 घंटा हम सोते हैं, 8 घंटा हम काम करते हैं, धन चाहिए, भोजन चाहिए, मकान चाहिए, वस्त्र चाहिए, शरीर की प्रवृत्ति है सब, जीवन भर शरीर के लिए हम करते हैं। फिर दूसरा संबंध, दूसरा दोस्त हमारे संबंध है, इनको हम मेरा समझते हैं। वो कहाँ तक आते हैं? अदालत तक, यानी शमशान घाट तक अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं। बाकी तो फिर आगे की यात्रा आत्मा को खुद ही करनी है। लेकिन तीसरा दोस्त कौन सा है? तीसरा दोस्त है हमारे कर्म। भगवान के दरबार में गवाही हमारे कर्म ही देते हैं, वो कर्म की पूंजी हम साथ में ले जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, वो आत्मा के साथ आते हैं। तो हमारी जो डेस्टिनी है, प्रारब्ध है, वो हमारे कर्मों पर निर्भर होती है। और इसीलिए एक ज्ञानी योगी व्यक्ति कर्मों के महत्व को समझता है और वो कुछ समय अपनी आत्मिक उन्नति में भी देता है। अगर हम सारा समय धन कमाने में देते हैं, सारा समय हम संबंधों के निर्वाह में देते हैं, जिम्मेवारियों में देते हैं, और कुछ भी समय हम, क्योंकि वो तीसरा मित्र है, यानी सबसे कम ध्यान हमारा अपने कर्मों पर और आत्मिक उन्नति पर होता है, तो फिर जाते समय हमारा हाथ खाली होगा। लेकिन यदि हम अपनी आत्मिक उन्नति में समय देते हैं तो वो अविनाशी कमाई है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक जाने वाली है। वो आज भी हमें सुख देती है और आने वाले जन्मों की भी प्रारब्ध होती है। तो इस तरह से राजयोग अभ्यास से विकारों पर हमारी विजय होने लगती है। इन शक्तियों के द्वारा काम विकार पर विजय होती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टि होती है। आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, क्योंकि आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, वो देहभान से हमें ऊपर उठाती है। और इस तरह से काम विकार पर विजय होती है, क्रोध पर विजय होती है, क्योंकि शांति की शक्ति जीवन में आने लगती है। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा भाव ये विकसित होने लगते हैं, तो क्रोध आता ही नहीं है, और आता भी है तो हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोभ समाप्त होता है, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं परोपकारी बनते हैं, संतोष का गुण जीवन में आता है। मोह समाप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हम साथ ले जाने वाले नहीं हैं, तो हम जो भी प्रयोग करते हैं या साथ रहते हैं वो अनासक्त वृत्ति से। मोह के साथ साथ अहंकार समाप्त होता है, क्योंकि निमित्त भाव आता है हमारे अंदर, हमें पता है कि करण करावनहार परमात्मा है और उससे नम्रता आती है और इस तरह से स्वपरिवर्तन होता है। स्वपरिवर्तन से हम स्वयं के जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं और साथ साथ भगवान के भी इस महान कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। तो इस सम्मेलन का ये आपका आखिरी सत्र है। सम्मेलन यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जीवन की एक नई शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। तो जैसे हर दिन आपने राजयोग अभ्यास किया है, ऐसे कुछ मिनट अभी हम पुनः परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। आप सभी सीधे होके बैठें। और मन को तैयार करें अंतर यात्रा के लिए। ये मन की यात्रा है ईश्वर की ओर। अपने मन को अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से न्यारा कर लें और अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं। स्वयं को देखें भ्रकुटी के मध्य में। चमकते हुए सितारे के समान मैं प्रकाश पुंज हूं। मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। सत चित आनंद स्वरूप हूं। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस देह का आधार लिया है। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है। जिसमें हम आत्माएं सभी अपना अपना पात्र निर्वाह कर रहे हैं। अपने मूल स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार, परम धाम है। जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, ले जाए मन को परम धाम में, जहां संपूर्ण शांति है। मेरे परम पिता, मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं।
मैं स्वयं को परमात्मा के समीप सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है। शांति के सागर हैं, परम पवित्र हैं, सर्व के कल्याणकारी हैं। दुखहर्ता और सुखदाता हैं। ईश्वर की याद मुझे आत्मिक सुख का अनुभव कराने वाली है। ईश्वरीय शक्तियों को मैं स्वयं में महसूस कर रही हूँ। और जब भगवान मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करके जीवन में परिवर्तन ला सकती हूँ। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। मेरे मार्गदर्शक हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने वाले हैं। मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ। कि परमात्मा ने ज्ञान देकर मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया है। ईश्वरीय शिक्षाओं पर चलकर मैं अवश्य अपना जीवन श्रेष्ठ बनाऊंगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और अब आ जाएं पुनः इस भौतिक जगत में। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। और अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में भी मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता दीदी जी, आपने राजयोग से किस तरह हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है उसका बहुत अच्छा सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। और आप सभी का आज, जैसे दीदी ने बताया कि लास्ट सेशन था ये, और आप सभी अपने जीवन में की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे है ना? जब भी आप वहां जाने के बाद हमारे जो भी लोकल सेंटर्स है वहां के आप संपर्क में रहिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाकर औरों को भी श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। ओम शांति।